ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोय सवसाहूणम् ईसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलानं च सवेस पढ़मं हवै मंगलं चत्तारि मंगलं अरहंत मंगलं सिद्ध मंगलं साहु मंगलं केवलिपन्नतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपन्नतो धम्मोलोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहंत शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलिपन्नतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली मलयाचल की शुचि शीतल वायु सुगंध समेत मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली भजले अरिहंत हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। भजले अरिहंत अरिहर रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। इसी अभिप्राय को लेकर एक बड़ा ही सुंदर काव्य समाधि भक्ति में आता है। आबाल्याजिन देव देव भवतः श्रीपादयोः सेवया सेवा सक्त विनेय कल्पलतया कालोद्ययावद्गतः त्वान्तस्याः फलमर्थये तदधुना प्राणप्रयाणक्षणे तन्नाम प्रतिबद्धवर्ण पठने कंठोस्त्वकुंठो मम। समाधि भक्ति में आचार्य कहते हैं, रचनाकार भक्तिकार कहते हैं, आबाल्यात् जिन देव देव भवतः श्रीपादयोः सेवया। हे जिन देव देव, कर्मों को जीतने वाले और देवों के लिए भी आराध्य, हे जिनेन्द्र प्रभु, आ बाल्यात बाल्यकाल से श्री पादयोः सेवया आपके श्री चरणों की सेवा से अधुना याचये अर्थये। मैंने जो सेवा की वो सेवा ऐसी सेवा की कि उसी में मेरा पूरा जीवन निकल गया। कालोद्य यावत गता, मेरा जो काल था वो अद्य यावत आज पर्यंत गत आपके चरणों की सेवा पूर्वक ही व्यतीत हो गया। और वह सेवा कैसी थी? तो सेवा सक्त विनेय कल्प लता, जो चरणों की सेवा में आसक्त रखने रहने वाले विनेय जन है, आपके श्रद्धालु जन है, आपके भक्त जन है, उनके लिए कल्प लताया कल्प लता के समान थी। अब सेवा स्त्रीलिंग है इसलिए कल्प लता का रूपक दे रहे हैं। पुल्लिंग शब्द के लिए कल्प वृक्ष कह देते थे, लेकिन यहां सेवा स्त्रीलिंग शब्द है तो रचनाकार कह रहे हैं कि आपकी जो सेवा है वो सेवा करने वाले के लिए कल्प लता के समान है। तो मैंने बाल्यकाल से लेकर जो आपकी सेवा पूर्वक समय व्यतीत किया है, मेरा पूरा जीवन काल आपके श्री चरणों की सेवा के साथ सेवा करते करते गतः निकल गया, बीत गया। तस्याः त्वाम अर्थये, मैंने जो इतनी सेवा की उस सेवा के बदले मैंने कभी कोई सांसारिक सुख नहीं मांगा। यहां तक कि मैंने अपने संकटों में भी जीना सीख लिया। मैंने उन संकटों को अपने पूर्व भव के कर्मों का दंड मानकर स्वीकार कर लिया। हे प्रभु, मैंने जीवन भर मुझे होने वाले कष्टों की आपसे कोई शिकायत नहीं की, फरियाद नहीं की। मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया, लेकिन आज जब जीवन की सांझ मेरे सामने है तो मैं अर्थ ही प्रार्थना कर रहा हूं। प्राण प्रयाण क्षणे, मेरे प्राणों के प्रयाण क्षण में, मैं नहीं जानता अब कितनी श्वास अवशिष्ट है, कितना समय शेष रह गया है, इसलिए मैं प्राणों के प्रयाण क्षण में मैं आपसे मांग रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं याचना कर रहा हूं, तन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठनी कंठोस्त्व कुंठो मम। हे प्रभु, आपके नामाक्षरों का उच्चारण करते समय जब मेरी अंतिम श्वास निकले तो मेरा गला खुला रहे, जीवन भर सेवा करके अंत में मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं अपनी अंतिम श्वास में आपका नाम अपने कंठ से उच्चारित करना चाहता हूं। तो प्रार्थना केवल इतनी है, मेरी भावना तो यह है कि मैं उच्चारित करूं, और आपसे मेरी प्रार्थना यह है कि मेरा कंठ खुला रखना, बस। और कुछ नहीं मांगता, न मुझे मोक्ष चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न भविष्य में और कुछ चाहिए, बस अंतिम श्वास में मेरा कंठ खुला रखना। कितनी अद्भुत भक्ति है ये। वणिक मानसिकता अदला बदली का हिसाब रखती है, अपने धर्मानुष्ठानों का रिकॉर्ड रखती है, पूरी डायरी भरी मिलती है कि मैंने इतनी अष्टमियां, इतनी चतुर्दशियां, इतने दश लक्षण, इतनी अष्टांग निकाय और इतने इतने अनुष्ठान किए, पाप किए उसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन भक्ति क्या कर ली भगवान की, और कुछ धर्मानुष्ठान क्या कर लिए, वो हिसाब प्रारंभ हो जाते हैं। कभी स्मरण रखने के लिए कि मेरी विधि कितनी बाकी रह गई है, कितनी पूर्ण हो चुकी है, उसको लिखने में आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको लिख करके अपने आप को विकसित समझना और कभी कभी अहंकार करने लगना विपरीत गति है, ये ऊर्ध्व गति के लक्षण नहीं है। वास्तव में संतोष और असंतोष मनुष्य के जीवन में दोनों आवश्यक है। संतोष सांसारिक सुखों के प्रति कि ठीक है जितने सुख मिल रहे हैं बस इतने में संतोष करो, तृष्णा अच्छी नहीं होती। और असंतोष, अपन जितनी भी भक्ति कर रहे हैं, जितना भी धर्म कर रहे हैं, ये नहीं समझना कि बस इतना काफी है, अभी काफी नहीं है। चौथे काल में सुकुमाल स्वामी ने भी जो किया था ना, वो मोक्ष के लिए काफी नहीं था। अब इससे आप अनुमान लगा लो कि पंचम काल में आप जीवन भर जो भी कर रहे हो वो काफी कैसे हो सकता है। इसमें संतोष नहीं करना है, जितना बने उतना आगे बढ़ते रहना है। करोड़ों जाप कर लें, हजारों बार ध्यान कर लें, कईयों बार कईयों को क्षमा कर दें, और ये सोचना भी कि मैं अभिमान नहीं करता, एक प्रकार का अभिमान है। अभिमान न करने का भी अभिमान हो सकता है। मन अनंत भवों से, राग द्वेष मोह से संस्कारित है, इसलिए इस जीवन में मन की परिणति के प्रति यदि चेतन सजग रहे, सावधान रहे, तो कल्याण हो सकता है। नमो अरहंताणम पद पर आगम के सुंदर वचनों को आलंबन बनाकर अनेक असाधारण तथ्य जानने का सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब नमो अरिहंताणम पद के ऊपर पूर्व सत्र में विवेचन प्रारंभ किया गया था। आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा कि संसार के सब दुखों की प्राप्ति में निमित्त होने के कारण अरि अर्थात शत्रु मोह है, तथाच उसी प्रकार शेष कर्म व्यापारो वैफल्यम उपेयादिति चेत न शेष कर्मणा मोह तंत्रत्वात्। एक शंकाकार शिष्य आचार्य से पूछते हैं कि हे गुरुवर, आप कह रहे हैं कि मोह इस जीव का शत्रु है, तो क्या शेष कर्म जीव के शत्रु नहीं है? तो आचार्य कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा कि शेष कर्म जीव के शत्रु नहीं है। शेष कर्म मोह के सेवक हैं। तो स्वामी जब वार करेगा तो अकेला तो नहीं करेगा, वो अपनी सेना के साथ आएगा। राजा क्या अकेला चढ़ाई करता है किसी दूसरे राज्य पर? नहीं, अपने दल बल के साथ चढ़ाई करता है ना। नहीं मोहमंतरेण शेष कर्माणि स्वकार्य निष्पत्तौ व्यापृतानि उपलभ्यन्ते। शेष कर्म अपने राजा के बिना अपने कार्य को पूर्ण करने में व्यापृत अर्थात परिणत नहीं प्राप्त होते। सारे कर्म आप देखो, सारे कर्म जो भी उपद्रव मचा रहे हैं, वो मोह के सहयोग से ही सारा काम हो रहा है। यदि राजा न हो तो फिर बाकी सेना कुछ नहीं कर सकती। येन तेषां स्वातंत्र्यं जायेत, जिससे वो स्वतंत्र हो सके। वो स्वतंत्र है ही नहीं, वो पराधीन है। मोह के आदेश से सारे कर्म अपना अपना काम करते हैं। मोहे विनष्टेपि कियन्तमपि कालं शेष कर्मणां सत्वोपलम्भात् न तेषां तत्तंत्रत्वमिति चेत। अब देखिए, अब शंकाकार कई प्रकार के होते हैं। कुछ शंकाकार पढ़े लिखे भी होते हैं, कुछ शंकाकार थोड़े अनजान होते हैं। तो पहली शंका तो एक अनजान शंकाकार ने की थी कि भाई, हमने तो सुना है कि बहुत सारे कर्म होते हैं, आप कह रहे हो कि मोह जो है वो शत्रु है, तो क्या बाकी कर्म शत्रु नहीं है? तो आचार्य महाराज ने उत्तर दिया कि ऐसा हमने नहीं कहा कि बाकी कर्म शत्रु नहीं है। वे भी शत्रु का कार्य कर रहे हैं, लेकिन मोह के अधीन होकर कर रहे हैं। बिना मोह के वो अपना काम नहीं कर सकते। तो अब एक पढ़ा लिखा शिष्य है तो मुनिराज ही, आचार्य वीरसेन स्वामी के संगस्थ कोई साधु हो सकते हैं, वो पूछ रहे हैं कि हे गुरुवर, हमने तो आपके स्वाध्यायों में ये सब बातें पढ़ी है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि मोह नष्ट हो जाता है दशम गुण स्थान में, दशम गुणस्थान का जो अंतिम समय होता है वो मोह के सर्वनाश का काल होता है क्षपक श्रेणी की अपेक्षा। तो मोह के नष्ट हो जाने पर भी जो कर्म बाकी बच जाते हैं उनका राजा कौन होता है ना, मजेदार प्रश्न है। कियंतम अपि कालम, कुछ काल तो वो बाकी कर्म रह जाते हैं ना, तो शेष कर्मणाम सत्वोपलम्भात, बाकी कर्मों का अस्तित्व उपलब्ध होता है, इसलिए न तेषां तत्तंत्रत्वम् इति चेत, तो वो जो बचे हुए कर्म हैं वो मोह के अधीन नहीं हुए। ऐसा यदि प्रश्न करो तो आचार्य कहते हैं ना, जैसा तुम गुणाभाग कर रहे हो वैसा हिसाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सुंदर उत्तर दिया, विनष्टेरौ जन्म मरण प्रबंध लक्षण संसारोत्पादन सामर्थ्यमंतरेण तत्सत्वस्यासत्व समानत्वात्। बहुत सुंदर बात है, मोह रूपी शत्रु के विनष्ट हो जाने पर जन्म और मरण का है प्रबंध जिसमें, और जन्म मरण का प्रबंध है लक्षण जिसका, ऐसे संसार के उत्पादन की क्षमता के बिना वे बचे हुए कर्म उन बचे हुए कर्मों का जो सत्व है अस्तित्व है वो असत्व समानत्वात्, अस्तित्व न होने के समान होने के कारण केवल ज्ञानाद्यशेषात्म गुणाविर्भाव प्रतिबंधन प्रत्यय हम दूसरी पति में पाठ देखते हैं। बहुत सुंदर शंका समाधान करते हैं आचार्य महाराज। तत्वार्थ वार्तिक में भी बड़े सुंदर शंका समाधान है, सर्वार्थ सिद्धि में भी है, और धवला का तो कहना ही क्या है। अभी अपन धवला की पंक्तियां सुन रहे हैं। कितने दूर?
नौ
महाराज,
दो महाराज,
नौ बजे आएंगे। जी हाँ, दो मुनिराज यहाँ पधार रहे हैं, नौ बजे आएंगे बोल रहे हैं। मोह रूप अरि के नष्ट हो जाने पर जन्म मरण की परंपरा रूप संसार के उत्पादन की सामर्थ्य शेष कर्मों में नहीं रहने से उन कर्मों का सत्व असत्व के समान हो जाता है, ये अपन ने पढ़ा था। तथा केवल ज्ञान आदि संपूर्ण आत्मगुणों के आविर्भाव के रोकने में समर्थ कारण होने से भी मोह प्रधान शत्रु है, ये बात है। जब तक मोह रहेगा तब तक केवल ज्ञान आदि जो आत्मिक गुण है, अनुजीवी गुण है, वे कभी भी आविर्भूत नहीं हो सकेंगे। तस्यारेर हननाद अरिहंता, उस शत्रु के हंता अरिहंत है। इस प्रकार अरिहंत शब्द की व्युत्पत्ति कही कि अरेर हननाद अरिहंता, शत्रु के नाश से शत्रु का हनन करने के कारण वे अरिहंत है। फिर बाकी कर्मों का भी जो शत्रुत्व है, बाकी कर्म भी आत्मा को क्षति पहुंचाते हैं मोह के अधीन होकर, उस विषय में भी कहते हैं कि रजो हननाद्वा अरिहंता, रजस ज्ञान दृगा वर्णानि रजांसीव बहिरंगांतरंगाशेष त्रिकाल गोचरान नंतार्थ व्यंजन परिणामात्मक परिणामात्मक वस्तु विषय बोधानुभव प्रतिबंधकत्वाद रजांसी। रज क्या है तो आचार्य कहते हैं धूल के समान जो बहिरंग और अंतरंग समस्त तीन काल विषयक अनंत पदार्थों की अर्थ और व्यंजन पर्याय रूप परिणति है, उससे युक्त जो वस्तुएं हैं, चेतन और अचेतन पदार्थ हैं, उनके विषय में ज्ञान और परिचय पर प्रतिबंध डालते हैं ज्ञानावरण और दर्शनावरण, प्रतिबंध डालते हैं। जैसे दर्पण पर धूल होती है तो चेहरा साफ नहीं दिखता, उसी प्रकार आत्मा पर ज्ञान और दर्शनावरण रूपी धूल होती है तो जगत के ज्ञेय पदार्थ ज्ञान को और परिचय को प्राप्त नहीं हो पाते, इसलिए ज्ञान दृगावरणानि रजांसी। ज्ञान और दर्शनावरण, ज्ञानावरण और दर्शनावरण रज हैं। अब इसके बाद कोई शंका करे उससे पहले ही आचार्य महाराज कह रहे हैं मोहोपि रज, मोह भी धूल है, भस्म रजसा पूरितानानामिव, भस्म रजसा पूरितानानामिव भूयो मोहावरुद्धात्मनाम जिम्म भावोपलम्बात, भावोपलम्भात। मोह भी रज है क्योंकि जिस प्रकार जिनके मुंह पर राख लगी होती है उनमें जिम्म भाव पाया जाता है, अर्थात वे अपना काम ठीक से नहीं करते, उसी प्रकार मोह से जिनकी आत्मा आच्छादित रहती है उनमें भी जिम्म भाव पाया जाता है, अर्थात उनकी आत्मा कलुषता, मंदता और कुटिलता से युक्त रहती है। किमिति तृतयस्यैव विनाश उपदिश्यत इति चेतना। शंकाकार ने प्रश्न किया कि इस तरह आपने तीन के विनाश की बात कर दी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय। तो तीन के ही विनाश का उपदेश क्यों दिया? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, एतद् विनाशस्य शेष कर्म विनाशाविना भावित्वात्। ऐसा मत समझिए कि केवल तीन के ही विनाश का उपदेश है, क्योंकि शेष सभी कर्मों का विनाश इन तीन कर्मों के विनाश का अविनाभावी है। अर्थात इन तीन कर्मों के नाश होने पर शेष कर्मों का नाश अवश्यम भावी है। इनका नाश किए बिना शेष कर्मों का नाश नहीं हो सकता। तेषां हननाद अरिहंता, इसलिए तीनों का हनन करने के कारण अरिहंत हैं। रहस्याभावाद वा अरिहंता, रहस्य का अभाव होने से भी वे अरिहंत हैं। रहस्यम अंतरायः, रहस्य क्या है? अंतराय है। तस्य क्यों? क्योंकि वह शेष घातित तृतय विनाशाविना भाविनो भ्रष्ट बीजवत निःशक्तिकृताघाति कर्मणो हननादरिहंता। यह अंतिम पंक्ति है अरिहंत शब्द की व्याख्या में। अथवा रहस्य के अभाव से भी अरिहंत हैं। रहस्य अंतराय कर्म को कहते हैं। अंतराय कर्म का नाश शेष तीन घातिया कर्मों के नाश का अविनाभावी है, और अंतराय कर्म का नाश होने पर अघाती कर्म निःशक्तिकृत हो जाते हैं। भ्रष्ट बीजवत, जो बीज बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको बोने से अंकुर नहीं निकलता। उसी प्रकार अंतराय कर्म का नाश हो जाने से जो बचे हुए अघाती कर्म हैं, वो बीज का काम नहीं कर सकते, उनकी शक्ति समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार चार घाती कर्मों के नाश से अरिहंत संज्ञा प्राप्त होती है। अंतरात्मा परमात्मा हो जाती है चार कर्मों के क्षय से। इसलिए नमो अरिहंताणं भी चार घाती कर्मों का क्षय करने वाले परमात्मा को नमस्कार करने की सूचना देता है। नमो अरिहंताणं। जैनम जयतु शासनम। दो मुनिराज पधार रहे हैं, तो आज का स्वाध्याय यहीं तक रखते हैं। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिन राज महंग्य जे जिन गृहे जिन सूत्र महंग्य जे जिन गृहे मुनिराज महंग्य जे ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्यावसा द्वादशांग श्रुत ज्ञानाय च अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।